ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकरामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमाम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे पञ्चाकल्पकरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि लोकशक्तिकम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाङ्गदिव्याक्षभे सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस् तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादारान् परः हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते नमो नलिननेत्राय वेणोवाद्य विनोदिने राधा अधर सुधापान शालिने वनमालिने तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रिय वरीयसि प्रेमभक्तिप्रदे देवि राधिकात्मं नमोऽस्तु ते नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरः प्रलम्बारे नमोऽस्तुस्ते द्राहि मां कृष्णपूर्वज नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरः प्रलम्बारे नमोऽस्तु ते द्राहि मां कृष्णपूर्वज नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरः प्रणम्बारे नमोऽस्तुते राहि मां कृष्णपूर्वज ये जो श्लोक है ये भगवान श्री बलराम जी की प्रणीति है। जैसे हर एक विग्रह की प्रणति रहती है उसी प्रकार से भगवान बलराम जी जो है जिनका आज आविर्भाव तिथि है उनकी ये प्रणति है। उनको प्रणाम करते समय बोलते कि नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ। मैं उनको प्रणाम करता हूं जो बल में सर्वश्रेष्ठ। श्री प्रभुपाल उनके एक तात्पर्य में कहते हैं कि बलराम जी ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रदाता है और वही ज्ञान हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में बलवान बनाता है। तो उस बल को प्रदान करने वाले ये बलराम जी और उनको बलराम इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान के कारण जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद प्रदान करने वाले ये बलराम है। और इसलिए उनको कहते हैं कि नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ। इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में जो भी बलवान है उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? बलराम। नमस्ते धरणी धरहा। और बलराम जी के एक अंश है इनको शेष कहा जाता है, अनंत शेष, जो अपने फनों पर इस सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए, इसलिए उनको धरणी धर भी कहा जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने एक तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो धरणी है धरणी उसे कहा जाता है जो धारण करती है सब और जो सबका आश्रय स्थान है। तो सारे जीवों का आश्रय है, विशेष करके जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनका आश्रय स्थान है धरणी। और उस धरणी को जो आश्रय देने वाले या उसको जो धारण करने वाले हैं वे है धरणी धर। और वे कौन है? बलराम जी। इसलिए वे कहते हैं कि मैं उन बलराम जी को प्रणाम करता हूं जो धरणी धर है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से सारे जीवात्माओं का जो आश्रय है। नमस्ते धरणी धरहा प्रलंबारे नमोस्तुते। और मैं किनको प्रणाम करता हूं? प्रलंब के जो अरि है, अरि यानी शत्रु। आप सबको मालूम होगा कि प्रलंबर प्रलंबासुर नाम का एक असुर था जो वृंदावन में आया था कंस के भेजने पर। और ये एक असुर है जिसका वध बलराम जी ने किया। और हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रलंबासुर जो है वो हमारी संशय वृत्ति जो है उसका प्रतीक है। और जब तक जीवात्मा में संशय रहता है ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है और ना ही भौतिक। तो इस संशय को जो मिटाने वाले हैं वो कौन है? बलराम जी। यानी बलराम हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके हमारे जीवन में अज्ञान के कारण जो संशय है उनको नष्ट कर देते हैं। इसलिए वे बलराम जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि नमस्ते प्रलंबारे नमोस्तुते। मैं उनको प्रणाम करता हूं जो प्रलंब के यानी सारे जीवात्माओं के हृदय में जो संशय है उसको नाश करने वाले। और त्राही माम कृष्ण पूर्वज। और बोलते कि त्राही माम यानी त्राही माने क्या? बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो वो कहते हैं कि मेरी रक्षा करो कौन? हे कृष्ण पूर्वज। कृष्ण पूर्वज यानी पूर्वज यानी जो कृष्ण से पहले जन्मे। तो भगवान श्री कृष्ण के पहले जिन्होंने जन्म लिया था भगवान ने। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में, विशेष करके उसके आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना या भगवत प्राप्ति होनी है तो उसके पहले आवश्यक है बलराम जी की कृपा प्राप्त करना। और प्रभुपाद जी कहा करते कि जो व्यक्ति, विशेष करके वे आचार्यों के बारे में कहा करते कि किसी आचार्य का आविर्भाव तिथि या तिरुभाव तिथि रहता है तो वे बहुत दयालु रहते हैं। आप उनसे जो जब मांगेंगे वो देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज तो उनका आविर्भाव तिथि है जो सबसे दयालु है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान और फल प्रदान करने वाला है। ऐसे बलराम जी का आविर्भाव। और वे कृष्ण पूर्वज है, अरे कृपा कर रहे हैं भगवान से भी वे आगे हैं। तो पहले वे कृपा करते हैं, उसके उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में, सॉरी दशम स्कंद के पहले ही अध्याय में यहाँ पे भगवान का अवतरण के बारे में चर्चा होती है। वहां उस कथा भाग में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के जो पहले छह भाई थे वो तो सब कंस के द्वारा मारे गए, और जब सातवीं बार माता देवकी ने गर्भ धारण किया तो उस समय भगवान ने अपनी शक्ति जो है योग माया उसको बुलाया और कहा कि देवकी के गर्भ में जो गर्भाशय में जो गर्भ है उसे तुम वहां से निकालो और क्या करो, उसे रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्या आवश्यकता थी? तो उसकी व्याख्या करते समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो छह पुत्र है ये मरीचि के छह पुत्र कहलाते हैं। जो सामान्य जीवात्मा थे और उन्होंने पहले देवकी के गर्भ में आश्रय लिया था, तो उसके शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भी इस धरती पर अवतरित होना चाहते हैं तो उसके पहले वे हर समय उनके जो नित्य सेवक हैं शेष संकर्षण उनको पहले भेजते हैं। सो आदि संकर्षण जो है वे बलराम है, तो वे पहले वहां पे आते और उस गर्भ को पवित्र बनाते शुद्ध करते, क्योंकि वे सबके आदि गुरु हैं। उनका दूसरा नाम शेष भी है और अनंत भी है। शेष यानी भगवान जिसपे वास करते हैं। तो भगवान का आसन बनाने के लिए भगवान आने से पहले वे स्वयं देवकी के गर्भ में प्रकट हुए और फिर वहां से उनको आकर्षित करके फिर रोहिणी के गर्भ में छोड़ा गया। और इसलिए भगवान कहते हैं कि उनका नाम संकर्षण होगा और उनमें जो आकर्षण शक्ति है उसी आकर्षण शक्ति के कारण इस भौतिक ब्रह्मांड में हर एक ग्रह लोक तारे अपनी अपनी त्रिज्या में अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे, उसे वो छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि वो बलराम जी का आकर्षण। और बलराम जी आदि गुरु होने के कारण जब तक वे हमारे हृदय में प्रकट नहीं होते और हृदय के संशय को नहीं हटाते तब तक भगवान को विराजित करने के लिए सिंहासन हमारे हृदय में स्थापित नहीं होता। तो भगवान को हृदय में बिठाने के लिए जो आवश्यक आसन है वह है बलराम जी। बलराम जी ऐसे भगवान के सेवक है जो हर स्थिति में भगवान की सेवा करते हैं, हर रस में वे भगवान की सेवा करते हैं। वो एक ही ऐसे केवल एकमात्र ही व्यक्ति है जो पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान का जितना भी सरंजाम है जिसे पैराफर्नेलिया कहा जाता है वो सब भगवान जी का ही विस्तारित रूप है। जैसे वृंदावन धाम ये भी बलराम जी का ही विस्तारित रूप है। भगवान के जितने भी रत्न आभूषण पादुकाएं जो भी कुछ है वो सब बलराम जी का विस्तारित रूप है। भगवान की शैया, उनकी यष्टि, उनकी वेणु, उनके पादुकाएं, उनके वस्त्र, आभरण, आभूषण, तिलक, ये सब कुछ बलराम जी का ही विस्तारित रूप। तो बलराम जी का अस्तित्व केवल भगवान को आनंद देने के लिए। और जो भगवान से द्वेष करते हैं उन व्यक्तियों को भगवान के पास आकर्षित करने के लिए भी वे सदा कार्यरत हैं। श्रीमद् भागवत में तो बहुत ही अल्प मात्रा में बलराम जी के लीलाओं का वर्णन है, लेकिन हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत रूप से वर्णन है, जहां पर बलराम जी की कई लीलाओं का वर्णन आता है। फिर जीव गोस्वामी द्वारा लिखित गोपाल चंपू जो है उसमें भी भगवान और बलराम जी की कई लीलाओं का वर्णन आता है। वे ऐसे ही एकमात्र व्यक्ति है जो भगवान की हर लीलाओं में भाग लीला करते और लेते हैं और अभी भी लेते हैं। खास करके वृंदावन लीला में वे भगवान को कभी शांत, कभी दास्य, कभी साख्य, कभी वात्सल्य और अनंग मंजरी के रूप में माधुर्य भाव में भी भगवान की सेवा करते हैं। अनंग मंजरी जो अभिमन्यु की छोटी बहन कहलाती है, वो राधा रानी की निजी सेवक से ही करते हैं। तो वो भी बलराम जी का ही विस्तारित रूप। तो बलराम जी ये न कहना प्रकार है ना भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने का ही कार्य करते हैं। तो जिन जीवात्माओं की भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है तो उनको क्या करना चाहिए? बलराम जी को प्रसन्न करना चाहिए ना। जो भगवान को आनंद देते हैं, अगर आप तो नहीं दे पा रहे लेकिन जो दे रहा है उसको अगर आप सहायता करते हैं तो उसकी मदद करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान देखेंगे ना आपके। तो और जगन्नाथपुरी में तो एक विशेष बात कही जाती है कि अगर जगन्नाथ जी को आपको कुछ कहना है, उनको कुछ आपको बताना है, तो वे बोलते हैं कि बड़े ठाकुर को जाके बोलो। बड़ा ठाकुर है ना, ठाकुर यानी भगवान श्री कृष्ण, और बड़ो ठाकुर उनके बड़े भाई बलराम जी। वे कहते हैं कि बड़े ठाकुर जो है वो कालिया के कान है, कालिया माने कालिया सांप नहीं है। पूरी के जो भक्त है विशेष करके भगवान के साथ बहुत ही उनका गाढ़ा संबंध है, जिसके कारण वो भगवान के साथ मित्रता जैसी बात करते हैं। हम जैसे बोलते हैं अरे काड़ेगड़े, कभी कभी जो मित्रता में एक नजदीकी आ जाती है उससे हम बोलते हैं, उसी प्रकार के वे लोग भगवान को कालिया करके बुलाते हैं और बोलते हैं कालिया को अगर कुछ सुनाना है तो उसके कान कौन है? बड़ो ठाकुर। अगर उनको कोई बताता है तो निश्चित रूप से भगवान करते ही है और करना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान बलराम जी की सेवा के कारण उनकी हर एक इच्छा पूर्ति के लिए बाध्य है, वे बंधे हुए हैं। बलराम जी ने कहा और उन्होंने किया नहीं, ऐसा हो। लेकिन कई बार कृष्ण लीला में देखते हैं कि भगवान बलराम जी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। हालांकि ऐसा से रामायण या आनंद रामायण मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं याद आ रहा है। वहां पर बात होती कि जब त्रेता युग में रामलीला में लक्ष्मण जी डिसाइड करते हैं कि अगली बार अगर आपका अवतार हुआ तो मैं निश्चित रूप से आपका बड़ा भाई बनूंगा, ताकि आप मेरा सुनेंगे और मैं जो बोलूंगा वो करें। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे और मैं कहता रहूंगा चुपचाप। ये जन्म में तो मैंने बहुत सारा किया मेरे मन के अंदर। तो भगवान बोले ठीक है, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो वही करना पड़ेगा जो मुझे कर। और वैसा ही हुआ। कृष्ण लीला में देखते कई बार बलराम जी भगवान को बताते कि अरे ये मत करो, नहीं कर रहे, और कर लेते थे फिर समझा लेते थे बड़े भाई को, ऐसे नहीं है ऐसे होता है दाऊ जी। और दाऊ जी बोलते तू बोल मत, किंतु इतना मीठा बोल देता है कि उस मिठास में हम भूल जाते हैं कि हमें तुमसे क्या कहना है, और हर बार तुम हमको गोल कर लेते हो। जैसे एक बार बलराम जी ने देखा कि हमारा जो लाला है वो सबको प्यारा है, क्या विशेषता है उसकी, किसके कारण लोग उसके प्रति इतने आकर्षक हैं। किसी को एक याद है एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में जिसमें भगवान का सुंदर रूप से वर्णन किया, जिस श्लोक को सुनने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी का भी हृदय उनके प्रति आकर्षक हो गया। हाँ क्या है पूरा श्लोक, बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मानां रन्ध्रान् वेणुर् अधरपूरयन् अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्य स्वपद रमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। क्यों लोग आकर्षित होते उसके प्रति, बरहा पीड़म उसने क्या धारण किया, बरहा मोर का पिच्छ, नटवर बपुहु और इतनी सुंदर रूप से उसने अपने आप को सजा लिया है कि कोई भी नटवर, नट माने जो अपने आप को सजाता है और ये अपने आप को सजाने में सर्वश्रेष्ठ है। कर्णयो कर्णिकारम अपने दोनों कानों में जिसने कर्णिक नीले रंग के फूल डाले हुए, और कनक कपिशम विभ्रद वासक कनक कपिशम, कनक यानी सुवर्ण, कपिश यानी विभ्रद वास, विभ्रद माने पीला वास, कनक कपिशम विभ्रद माने विद्युत जैसा तेजोमय तेजोमय चमकीला, वास कनक कपिशम सोने के जैसा जिसने वस्त्र धारण किया, और वैजयंती च माला और वैजयंत की माला जिसने धारण किया, और क्या कर रहे हैं अपने ओठों से वेणु में सुधा अधर सुधा, अपने ओठों का जो अमृत है वो वेणु को पिला रहा है, और ऐसे करते हुए प्राविशत गीत कीर्ति वृंदारण्य में प्रवेश कर रहा है। तो बलराम जी ये सोचा, आज के दिन ही सोचा था उन्होंने, बोले आज चलो मेरा बर्थडे है तो मैं उसके जैसा वेश कर लेता हूं, और बस बलराम जी ने भी अपने मस्तक पे वही बरहा पीठ धारण किया, वैजयंती माला डाली गले में, वैजयंती माला मैंने वन के फूलों की अलग अलग फूलों से बनी हुई जो माला रहती है वो उन्होंने धारण की, फिर पीत वस्त्र धारण किया, वेणु अपने कमर में लगाई और घूमने चले यमुना के तट पे। उसी समय कंस महाशय ने अपने एक बहुत ही नजदीकी मित्र जिसका नाम था केशी, केशी को बुलाया, बोले आज तुम्हें वृंदावन जाना है और वो जो कृष्ण है उसको खत्म करना है, जाओ। तो बोले वो कैसे पहचानूं मैं उसको, तो बोले उसको पहचानना बहुत आसान है, वृंदावन में केवल एक ही व्यक्ति है जो मस्तक पे मोर का पिच्छ धारण करता है, गले में वैजयंती माला डालता है, उसके कमर में वेणु लगी रहती है और पीले कपड़े डाले हुए उसने, बोला बोले जाओ ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें दिखाई देगा उसको खत्म कर। ऋषि महाशय भी आए ढूंढते ढूंढते वृंदावन में आए तो इतने भयानक थे कि पूछो मत। और आते ही उन्होंने देखा यमुना के तट पे एक व्यक्ति, उसी एक बालक, उसी सारे जो वर्णन किया है उस वर्णन के अनुसार पूरी वेश बना के बैठा हुआ। सीधा आके उसने एक बैक किक मारी बलराम जी के सीधा छाती पे। हाँ, बलराम जी मूर्छित होके वहीं पे गिर गया। उसको लगा कि मर गया तो चला गया, लेकिन जब बलराम जी के होश खुले तो मालूम पड़ा कि नौटंकी नहीं चलेगी। बोले जिसका जो है उसको ही पहनने दो, किसी को कुछ बोले नहीं, ला के सारे वस्त्र उतारे, अपने धारण किया और निकल पड़े। लेकिन लाला को तो सब मालूम था, तो लाला बोले ठीक है, दाऊ जी को बर्थडे गिफ्ट मिल गया। और फिर लाला वापस यमुना के तट पे, तब केशी ने देखा। केशी बोला ठीक है, अभी तो इसको मारा था सफेद रंग में था, अभी काला हो क्या है? अच्छा तो बड़ा नाटक कर रहा है। तो केशी को लगा भाई ये करके वो फिर से हाइंड लेके ने पीछे की लात मारने के लिए, तो उसको क्या मालूम कि ये कौन है, इन्होंने कभी लात खाई नहीं है किसी, लात देने में तो माहिर है। पहली लात मारी थी पूतना को, दूसरी मारी शकट असुर को। तो बोले ठीक है मार ला, प्रयास किया उल्टा उड़ा दिया उसको, और फिर हाथ सीधा मुंह में डाल दिया, फट गया बेचारा अंदर बाहर से। और फिर दाऊ जी को बताया, दाऊ जी कैसा रहा आज का दिन? दाऊ जी बोले भाई तेरे जैसा कोई नहीं है, और तेरे जैसा बनने का प्रयास करूंगा तो मार पाऊंगा, छोड़। फिर एक बार और एक साल दाऊ जी का जन्मदिन था, और उस दिन दाऊ जी हमारे गोचारण के लिए गए, लेकिन लाला चले गए सबके साथ। और उस समय कौन सी लीला हुई? ब्रह्म विमोहन की लीला। भगवान ने कई लीलाएं हैं इस प्रकार से कि अन्य लोग उसको जान नहीं पाएंगे। बलराम जी केवल उन लीलाओं को जानते, बलराम जी देख रहे थे ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात कि वृक्ष के हर एक पालक के प्रति हमारे मन में इतना आकर्षण क्यों पैदा हो रहा है, जैसा कि कृष्ण के प्रति हमारे मन में आकर्षण। हर एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम स्नेह, हर एक बछड़ों के प्रति गाय का स्नेह, ये पहले जैसा नहीं लग रहा। कुछ तो विवेक विशेष लीला हुई है, लाला का कुछ तो कमाल है कि जिसके कारण ये लोगों का अपने अपने बच्चों के प्रति इतना आकर्षण है। वे सोच ही रहे थे और फिर एक दिन लाला को बोल ही दिया उन्होंने, बोले लाले क्या हो रहा है, ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या गड़बड़ की आपने? ब्रह्मवाद पुराण में वर्णन आता है, गर्ग संहिता में बताते हैं कि उसी साल एक्चुअली बलराम जी को तब डाउट आया जब पूर्णमासी तुरंत हर एक के घर में चली गई और बोली कि अभी ये जो साल है ये सबसे अच्छा है, तो अपने सारे बच्चों के विवाह करवा दो। तो दाऊ जी को डाउट आया, बोले इस साल ही क्यों, ऐसा विशेष क्या है? तो लाले को पूछा भाई क्या हो रहा है, पूर्णमासी जी सारे लोगों की शादी करवा रही है, आपकी और हमारी भी हो जाएगी, क्या हो रहा है? तो बोले आप तो दाऊ जी है, आप सबको जानते हैं। तो बलराम जी जान लिया, बोले सबकी शादी एक ही व्यक्ति के साथ हो रही है। बोले वो तुम, क्योंकि बलराम जी एक ऐसा तत्व है कि जिससे कुछ छुप नहीं पाता, चाहे भगवान की लीला हो या हमारा ज्ञान हो या हमारा ढोंग, बलराम हर चीज को पर्दाफाश कर देता है। और उनका प्रेम भी अजीबो गरीब लोगों से होता है। उनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था मालूम है? जो ईर्षा और द्वेष का भंडार था उसके प्रति इनको प्रेम था। बलराम जी जब भी है ऐसे ही रहे, जब नित्यानंद प्रभु बन के आए तो ज्यादा स्नेह किसके प्रति था? उनका आश्रय ऐसे विचित्र रहता है, जो दुनिया को दादागिरी करते हैं उनके चरणों में ये गिर जाते हैं, और जो दुनिया से मान सम्मान की अपेक्षा न करते हुए बहुत ही सरल जीवन जीते हैं उनके सर पे पैर रख देते हैं। शिवानंद सेन को तो शाप दिया था, और रघुनाथ दास गोस्वामी के तो सर पे पैर रख दिया, बोले आ जाएगा सबसे बड़ा चोर है तू, और बुला के सबके सामने उसके सर के ऊपर पैर रख दिया, और बोले तुम्हारे चोरी का भी दंड दे रहा हूं मैं तुम्हें, जाओ। क्या दंड दिया? सबका पेट भरो, खिलाओ सबको दही चीड़ा, और उतनी दया के सागर। और उनको समझाना बहुत कठिन चीज नहीं है। जैसे एक बार महाभारत में वर्णन आता कि पांडव जब क्या था वो वारणावत लाक्षागृह से बच के बाहर आए थे और इनकॉग्निटो थे, समझे थे उसको, अज्ञात वास में घूम रहे थे, किसी को मालूम नहीं था, सारे लोग समझ रहे थे कि ये तो मर गए, लेकिन ये थे घूम रहे थे। और उसी समय द्रौपदी का भी ये था, स्वयंवर था, तो उस स्वयंवर में तो सारे राजा महाराजा सब लोग आए थे, और ये ब्राह्मण वेश में वहां पे आए, तो वहां पे दुर्योधन भी था, कर्ण था, दुशासन था, शकुनी था, जरासंध था, बाकी के भी पिठान से सात्यकी थे, बहुत सारे राजा वहां पे थे। तो उस समय दाऊजी और लाला दोनों आ गए, नहीं उस समय तो द्वारकाधीश थे, द्वारकाधीश और बलराम जी दोनों आए, तो बलराम जी ने पूछा कि ये तो सारे क्षत्रियों का मेला है, इसमें ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, और ये जो ब्राह्मण है तुम्हारे प्रति इतना क्यों, तुम भी उसको देख के हंस रहे हो, वो भी तुम्हें देख के हंस रहे हैं, और उसमें तो एक ने तुमको प्रणाम किया और दूसरे ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, ये क्या चल रहा है, कौन है ये लोग, और ये जो यहाँ पे प्रण रखा है वो केवल वही पालन कर सकता है जो, ये तो प्रण केवल वही कर सकता है पार, वो है अर्जुन। तो बोले जब वो अर्जुन प्रणाम कर रहा था इनको भगवान को, तो दाऊजी देख रहे थे, बोले कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को शोभा नहीं देता किसी क्षत्रिय को प्रणाम कर रहा, ये तुम्हें क्यों कर रहा है, बोले मुझे क्या मालूम, तो तुम क्यों हंस रहे हो, क्यों हंसना भी मैंने, बोले उसको उसने मुझे देखा प्रणाम किया, मैंने भी हंसा उसे देखा, आपको मालूम हो जाएगा वे कौन है, तो बोले दूसरे को तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो, तो बोले आपने देखा शरीर से कितना वो हट्टा घट्टा और बड़ा लगता है, तो बड़ों को आदर देना चाहिए ना, हाँ ठीक है बोले, बोलने में तो तुम आ ही रहे हो, बाद में आपको मालूम पड़ेगा। फिर सारे जब विफल हो गए उस पंथ को तोड़ने के लिए, तो उस समय अर्जुन उठा और अर्जुन ने वो लक्ष्य साथ लिया, फिर द्रौपदी आई कि द्रौपदी ने गले में हार डाल दिया, और फिर बलराम जी बोले कि मुझे लगता है शायद ये अर्जुन है, तो बोले धन्य है आपने जान तो लिया, ये अर्जुन है तो निश्चित रूप से जिसने जिसको तुमने प्रणाम किया वो भीम होगा, बोले हाँ वही, बोले लेकिन तो ये तो, अरे दाऊ जी आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपने बुआ के जो पुत्र है वो अभी जीवित है, तो बोले हाँ निश्चित रूप से आनंद होना चाहिए, बोले लेकिन ज्यादा आनंद प्रदर्शित मत करो अभी, ये समय नहीं है, वो दोनों बाद में मिलेंगे। फिर कुछ दिनों के पश्चात जब विदुर जी स्वयं आते हैं और इन सारे पांडवों को अपने राजमहल में लेके जाते हैं, युधिष्ठिर को युवराज करके करार किया जा रहा है, गया ऑलरेडी, तो दुर्योधन तो बहुत ये हो गया था, क्या कहते उसको राम गुरु, तो उसी समय वो उनका खजाना भी पूरा खाली हो गया होता है। क्योंकि दुर्योधन इतना दानी होता है, जो भी कोई कुछ मांगने के लिए दे दिया उसको, वो एक्चुअली उसका प्लान रहता है कि सारी प्रजा को दान देकर अपने कब्जे में रखे, ताकि युधिष्ठिर को वापस युवराज बन के करार न करे। लेकिन उसको क्या मालूम कि इसके धन से तो उसके तरफ लोग आकर्षित नहीं थे, उसको उल्लू ही बना रहे थे, पागल है, चढ़ो लूटो, लुटना जितना है लूट लिया। तो उस समय खजाना खाली था, तो वापस भरने के लिए सारे पांडवों को अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जाना पड़ा। यानी आजू बाजू के जो राजा हैं उनसे युद्ध करके, उनको पराजित करके उनका जो धन है उसे लाकर अपना आधार उनको भरना था। और उसी समय भीम द्वारका में बलराम जी के पास गदा युद्ध का ट्रेनिंग लेने आए, क्योंकि भगवान बलराम गदा युद्ध में सबसे प्रवीण थे, उनका एक नाम गदाधर भी है। और अभी हमने पढ़ा ये दशावतार स्तोत्र, जिसमें उनका एक नाम है हलधर, जो हल को धारण करता है। कई बार लोग पूछते कि वह इनके हाथ में हल क्यों है, कोई किसान है यहां पे इसने खेत में काम किया? किधर? ओ आपके अध्यक्ष ही है। खेत में हल क्यों चलाते हैं? अरे मैं भूल गया, इतना सारा बीज तो बोया आपने, हल क्यों चलाते हैं खेत में? बोलो मालिक, खेती की उस जमीन को बीज बोने से पहले उस जमीन को पोषक बनाना है, उस जमीन को अनुकूल करना है, उसमें से जो भी प्रतिकूल चीजें हैं उनको उससे हटाना है, उसके लिए हल चलाया जाता है। तो ये जो हलधर है जिनको बलराम कहा जाता है, वे भी हमारे हृदय को ऐसे ही शुद्ध बना देते हैं, हमारे हृदय को हल चला के भक्ति के बीज बोने के लिए अनुकूल बनाते हैं, इसलिए उनको हलधर कहा जाता है। क्योंकि भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो ज्ञान है वो केवल बलराम जी की कृपा से ही प्राप्त होता है, इसलिए उनको आदि गुरु भी कहा जाता है। और गुरु इस शब्द का अर्थ है हेरी, हेरी माने गुरु, गुरु माने जड़। तो बलराम जी ये तत्व बहुत ही कठिन है समझने का, उतना आसान नहीं, क्योंकि वो हर एक ऐसे कार्य को करते हैं कि जिससे हम कभी कभी कमी भी हो जाते हैं। जैसे उनका प्रेम दुर्योधन के प्रति, हालांकि भगवान के अनुकूल नहीं था दुर्योधन, वो बलराम जी के प्रति पूरा आसक्त था। मेरे ख्याल से महाभारत में ही दुर्योधन ने बलराम जी की स्तुति की है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, मेरे ख्याल से 5 या 6 पूरे अध्याय है जिसमें बलराम जी की स्तुति लिखी गई है दुर्योधन के। और वो पूरी तरह से जानते हैं कि ये व्यक्ति स्वयं भगवान है और उसी रूप में उनकी स्तुति कर रहे हैं, और फिर भगवान का अवमान कर रहे हैं दूसरी जगह, जो भगवान ने शांति दूत बन के आए और उनको अपना बहुत ही कम मात्रा में विश्व रूप दिखाया, तो वो क्या समझा? अरे माया भी है तू तो ग्वाला है, तो क्या कर पाएगा, ये सब नाटक है, मेरे सामने तेरी माया नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान को पकड़ने का प्रयास। और एक बार तो अपने पुत्री के शादी के समय तो बलराम जी स्वयं गए थे, क्योंकि कोई अनिरुद्ध है या कौन कौन उठा के लाया था, अनिरुद्ध साम 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 लक्ष्मण है ना, गुरु रंग के पुत्र है। तो शाम क्षत्रिय राक्षस से विवाह करना चाहता था, लक्ष्मण को उठा के लेके आ गया सीधा। आ रहा था तो दुर्योधन और बाकी के रथी महारथियों ने उसको पकड़ लिया। तो भगवान चाहे तो स्वयं जा सकते थे, लेकिन है तो पहले ही चारों। तो बोले दाऊ जी आपके प्रिय शिष्य का कार्य है, वो आप ही जाके थोड़ा समझाओ। तो राहु जी गए और राहु जी ने बोला कि आप ये अच्छा नहीं है, ये दो वंशियों का क्रोध अपने वंश में मत लो। तो दुर्योधन ने सबके सामने उनका अनादर कर दिया। अरे बोले आप क्या बात कर रहे हो, किसके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो? आप जानते हो छत्र और चामर इस्तेमाल करने का आपको अधिकार किसने दिया? इस कुरु वंश ने दिया। हमने आपको आज्ञा दी, इसके कारण आप छत्र या चामर आपकी सेवा में उपयोग में ला सकते हो, अन्यथा यह आपका अधिकार नहीं है। जैसे ही बलराम जी ने वो सुना, बस उनकी कृपा का जो स्विच था ऑफ हो गया। हल उठा ले, बोले आप लोगों की कृपा से हम क्षत्रिय बने हैं, अभी देखता हूं कौन आता है। और पूरा हल डाल दिया हस्तिनापुर में, खींच के लेके यमुना में फेंकने के लिए उसको, डर गया गंगा में, यमुना में गंगा में फेंकने। तो बस सारे जो भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, वो तो जान दिए कि अभी किसी की खैर नहीं है, सारे डूब के मर जाएंगे। तो दौड़ते हुए सब आया, विदुर जी आए और बलराम जी से माफी मांगने लगे, माफ कर दी कि तो बच्चा है कुछ भी बोल देता है, हो जाती है गलती। दुर्योधन को भी समझ में आया कि अभी 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 किसी की खैर नहीं है, और जाके उन्होंने उनके क्षमा याचना की और तुरंत माफ भी कर लेते। ठीक है बोले चलो माफ कर दिया, जाओ अभी शादी करवा देंगे। सांबा और लक्ष्मणा की शादी हो गई और दोनों को साथ में लेके चले आए। तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात आई तो उस समय दुर्योधन और युधिष्ठिर ये अपने अपने समूह बना रहे थे युद्ध के लिए। तो दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों द्वारका है, और आपको तो मालूम है अर्जुन की कथा कि किस प्रकार से दोनों ने अप्रोच किया था भगवान। भगवान सोए थे तो अर्जुन ने क्या किया, सिर के बल खड़ा रहा, नहीं फिर भगवान के चरणों के पास जाके बैठ गया, और दुर्योधन सिर के पास खड़ा रहा कि उसमें हम थी, मैं बड़ा हूं, इसके सामने थोड़ी खड़ा रहूंगा, इसके सर पे खड़ा रहूंगा, सर के पास खड़ा रहा। और जैसे ही भगवान की नींद खोली तो पहले किसको देखा उन्होंने, अर्जुन को देखा। तो बोले बोलो अर्जुन क्या चाहिए? दुर्योधन बोला उसको क्या पूछ रहे, पहले मैं आया हूं यहाँ पर, मुझे पूछो पहले। भगवान बोले ठीक है, आयु से बड़े हो लेकिन वो तो उनसे छोटा है, तो कहते छोटों का अधिकार रहता है मांगने का। नहीं नहीं बोला पहले मैं आया हूं। फिर बोले आप सोचिए थोड़ा, आपको शोभा नहीं देता, आप क्षत्रिय हो, बस उसको थोड़ा हवा मार दी। तो बोला ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चा है ना मांगने को चलो। अर्जुन मांग ले, अर्जुन बोला अभी बोले योगेश्वर आप जो देना चाहे दे। तो बोले देखो मेरे पास दो चीजें देने, एक तो मैं स्वयं हूं और दूसरी ये मेरे नारायण से। तो बोले अर्जुन तुमको जो चाहिए मांगो। तो अर्जुन ने क्या मांगा, लेकिन बोले देखो मैं किसी के पास किसी के पक्ष में जाऊंगा तो किसी भी प्रकार का आयुध नहीं चलाऊंगा, यानी युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन बोला यार तुम मेरे काम का है ही नहीं। अर्जुन ने कहा ठीक है भगवान आप मेरे पक्ष में आ जाओ। बस दुर्योधन मन में ही मन में सोच रहा था विनाश काले निद्रित बुद्धि, मांग मांग के निकम्मे को मांग लिया, चलो बिना मांगे मुझे नारायण सेना मिली, बहुत प्रसन्न होकर सेना लेके निकल गया। और उसको जाते हुए दाऊ जी ने देखा, दाऊ जी बोले लाला ये क्या है, क्यों आया था यहाँ पे? तो बोले अभी ये दोनों जाने युद्ध करने के लिए तैयार है, तो आप बोले आप किसके पक्ष में जाएंगे? तो बोले मैं तो ये झंझट में आऊंगा ही, क्योंकि एक तो है मेरे बुआ के पुत्र और दूसरी जगह पे मेरा प्रिय शिष्य, तो अगर शिष्य का पक्ष लूंगा तो बुआ के प्रति अपराध हो जाएगा, और बुआ का पक्ष लूंगा तो शिष्य के प्रति मेरी सुहृदयता के कारण मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाता हूँ। आप पाप करो, मैं पूरा चालन कर जाता हूँ। अदाओ ये तीर्थ यात्रा पर निकले पूरा भारतवर्ष घूमे। आपको मालूम है दो जगह है जहां पे दाऊ जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान उनके लिए वहां प्रकट हो, क्योंकि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक है उड़पी में, उड़पी में से उड़पी से 40 किलोमीटर पे एक बीच पे मालपोए बीच, मालपे मालपे बीच मालपे 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 बीच पे एक बलराम जी का मंदिर है। वहां पर बैठ के उन्हें बहुत ही उधर बोले लाला को देख के याद आ गई, जैसे याद आ गई लाला सामने खड़ा हो गया। और वहीं पर आप देखेंगे दो मंदिर है, एक भगवान का और एक बलराम जी का। और एक दूसरी जगह है वो है तिरुपति, क्या कहते हो पद्मा, दूसरा नाम क्या पद्मा क्या पद्मावती का एक और एक नाम है ना, मंगापट्ट नहीं, पद्मावती का दूसरा नाम पूछा मैं, शॉर्टकट मार क्या बात अलगा अल रेल
ग्राम का नाम
मंगापुरम गांव का अलवेली पद्मावती का नाम रूट के भाई अलवेली रूटने लगे। तो वहां पे जब आए बलराम जी तो वहां पे बहुत ही तीव्रता से उनको याद है लाला जी। और आप जैसे ही जाएंगे तो पहला मंदिर जो है मुख्य वो गोपुरम के सामने वाला वो मंदिर है कृष्ण मंदिर, भगवान कृष्ण सामने और बाजू में बलराम जी बैठे हुए जिनका मुख उत्तर की तरफ है। और आप विशेष देखेंगे वहां पर कि उस मंदिर में बलराम जी के जूते हैं, जूते निकाल के बैठे हुए थक गए। और थकने के बाद जैसे ब्रज लीला में तो भगवान गोचारण करने चले जाते थे, तो दाऊ जी जब कभी कभी थक जाते थे तो दाऊ जी का सर अपने गोद में लेते थे भगवान और उनको मसाज देते थे। तो वही याद आ रही थी दाऊ जी को और बस लाला सामने आके खड़े हो गए अपने गोपाल कृष्ण। तो ये दो जगह की जहां पे अभी भी आप देखते हैं इन दोनों भाइयों का प्रेम एक दूसरे के प्रति। और ब्रज की तो कई सारी लीला है जिसमें भगवान हर समय दाऊ जी की सहायता लिया करते थे। दाऊ जी कभी उनको डांटते थे, फटकारते थे, कभी एक मित्र की भांति उनसे प्रेम भी करते, कभी कभी खुद भगवान के पैरों का मसाज भी करते थे। उनके हर एक कार्य में उनको सहयोग देते, विशेष करके उनको जब मैया सजाती थी तो बलराम जी भी उसमें भाग लेते थे, यशोदा मैया को मदद करते थे। और जब वो उखल बंधन की लीला है उस समय तो राधा गोविंद जी उनकी कथा में बहुत सुंदर रूप से बता रहे थे। एक बार तो बोले जब मैया ने बांध दिया लाला को तो लाला रोने लगा बांधने के सामने, बांधने के पश्चात तो सारे मित्र सामने आके उसको चिढ़ाने लगे, बोले अच्छा हो गया तुझे, हर बार तेरे कारण हम पकड़े जाते हैं और पीट जाते हैं, अब देख मैया ने तेरे को पीटा है, अच्छा हुआ तेरे सर ऐसा ही होना चाहिए। तो दाऊ जी ने सबको भगा, बोले भगो यहाँ से, मेरे लाला को इतना तकलीफ दे रहे अब भी मैं जाता हूँ। तो बोले गुस्से के साथ, बोले मैया मैया तुमने क्या किया? बोले क्या हुआ? तुम जानती नहीं वो कौन है जिसको तुमने बांध के रखा? कौन है वो? बोले वही है जो कले के समय मछली का रूप धारण करके सारे ब्रह्मांड को बचाता है, वही है वो कूर्म जिसने पूरे उस मेरु पर्वत को अपने पीठ पे खड़ा करके पूरा सागर का मंथन करवाया था। तुम जानती हो वो कौन है? वही अजित बन के उस पर्वत के ऊपर था जिसके सहस्त्र बाहु थे, वही है वो जो प्रलय अग्नि अपने मुंह से निकाल के सारे ब्रह्मांड को नष्ट करता है, वही संकर्षण हो, अरे वही नरसिंह है जिसने उस हिरण्यकश्यप को जैसे राक्षसों को मारा हुआ था मैया बोली ऐसा वो ऐसा, तो तू कौन है बोली, अभी देखती हूँ, लाठी ली और भागी। मैया को देख जो दौड़े ना वापस पीछे पीछे मुड़के भी नहीं देखे, भाग गए। तो बोले सारे अवतार हो गए, मेरा ही घर मिला ना आने के लिए। तो भगवान की ये जो लीला है ये अपने भक्तों का आनंद प्रदान करते, क्योंकि भगवान कहा जाता है कि एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो, एक ही भगवान है लेकिन अपनी अनेक लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को अपनी तरफ अनुरक्त करता है, उनके मन में अपने प्रति अनुराग बढ़ाता है, ये उनकी विशेषता है। और एक बार जब बलराम जी वापस आए तीर्थ यात्रा से, आने के बाद उन्होंने पूछा, और जब उनको मालूम पड़ा कि किस प्रकार से पूरा संहार हुआ है, बहुत दुखी हो गए, और उनको भी मालूम पड़ा कि अभी लाला भी जल्दी अपनी पूरा लीला वाइंड अप कर लेगा, वो तो मैं देख नहीं सकता, तो इससे अच्छा है कि मैं ही पहले निकल जाऊं। तो वे चले गए, वे भी प्रभाव क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे बैठे और अपने इस शरीर का त्याग करके अपने दिव्य शरीर से अपने नित्य शेष के रूप में समुद्र में उन्होंने प्रवेश कर दिया, और उसके पश्चात के यादवों में कलह हुआ, यादववंश नष्ट हुआ, फिर भगवान भी अपनी लीला पूरी संपन्न करके निकल गए भगवत। तो वही भगवान वापस विशेष करके इस कलयुग में जब प्रकट हुए, तो वही बलदेव किस रूप में है, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सूत पोइलो से बलराम पोइलो नितार। भागवतम के दशम स्कंध के 65वें अध्याय में जब यमुना जो कि समुद्र की पत्नी है, वो जो भगवान बलराम से प्रार्थना करती है, तो उस समय वो भगवान बलराम को संबोधित करती है नित्यानंद के नाम से। नित्यानंद यानी जो शाश्वत आनंद प्रदान करता है, तो उसी नाम का सार्थक करने के लिए वही बलराम जी इस कलयुग में नित्यानंद के रूप में आते हैं और सबको शाश्वत प्रेम प्रदान करते हैं, और वही आदेश उनको दिया गया था। महाप्रभु ने उनको और हरिदास ठाकुर को देखा और कहा था, क्या कहा, ज्यादा देखा तारक कहा, उनको नहीं कहा, किसको कहा, नहीं उनको क्या कहा था, हाँ नित्यानंद और हरिदास, हर एक घर घर पे जाओ और हमारे नाम का प्रचार करो, सबको कृष्ण, और वही किया उन्होंने। वो एक सुंदर गीत है हमारे पास, अकरोर में परमानंद नित्यानंद राम, नित्यानंद राम हर एक के घर पे जाते थे, जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी है वे उनके पैरों में गिरते थे और हर एक को प्रार्थना करके देखिए आप कृष्ण माता, सबकी कृष्ण ही आपकी माता है, कृष्ण ही आपके पिता है, कृष्ण ही आपका धन है, तो कम से कम एक बार तो अपने मुख से कृष्ण का नाम लो। परमानंद नित्यानंद राय अभिमान में शून्य निताय नगरे भेड़ा अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गया हरिनाम महामंत्र दीक्षे न दिलाइया जार देखो तारक कहे द्रंते तीर्ण धरी हमारे कनिया लख बोलो गौर है ये तो बोली नित्यानंद घूमि पड़े घूमे कड़ी जाए सोनार पर्वत जनन धुलाते लोटा हेन अवतारे जाग रतिना जमीर लोचन भले से पापी हेलो हर कि अक्रोध परमानंद नित्यानंद है, ये तो क्रोध शून्य परमानंद स्वरूप नित्यानंद प्रभु है, अभिमान शून्य और पूरा अभिमान का त्याग करके, अपनी भगवत्ता का त्याग करके वे क्या कर रहे हैं, पूरे नगर में घूम रहे और अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गया, अधिम अधम पतित लोगों के द्वार पर जाते हैं, उनको उनके चरणों में पढ़ के प्रार्थना करें कि आप भगवान का नाम हो। ये भगवान जो स्वयं भगवत प्रेम से मत है, वही प्रेम वो दूसरों को देना चाहता है, वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास है ना। और कैसे दे रहे, पैरों में गिर के दे रहे, भैया ले, लोग नहीं चाह रहे फिर भी बोल रहे कि ले लो। ये तो बोली नित्यानंद घूमे गड़ी जा रहे, सोनार पर्वत जन घुमाते लोग, ऐसा लग रहा था कि जैसे सोने का पर्वत जो है वो धूल में गिर रहा है, लोट पलट रहा है, कि नित्यानंद को हर एक व्यक्ति के चरणों में गिर के उनको प्रेम देने का प्रयास करते। और इस व्यक्ति के अगर चरणों के प्रति आपके मन में आसक्ति न हो तो लोचनदास ठाकुर के लिए हेलो हेलो, लोचनदास ठाकुर के लिए पापी ऐसी जन्म और मर गया, जीवन में कुछ किया ही नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र में ऐसे ही फंसा रहा। इसलिए महाप्रभु भी स्वयं कहते हैं कि जो मेरे प्रति प्रेम दर्शाता है लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर कोई द्वेष करता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति नष्ट हो जाए, कभी भी मेरे पास नहीं आ पाए। जैसे रामलीला में भी हम देखते हैं एक द्विविक नाम का वानर था गोरिला, जिसने राम जी को मदद की थी राम रावण युद्ध में, लेकिन उसको अपने शक्ति का बहुत अभिमान था और उसके कारण वो लक्ष्मण जी का उपहास करता, और उसके पश्चात जब उसको नरकासुर का सहवास मिला तो भगवान दिखाना चाहते थे कि कोई व्यक्ति अगर किसी दुष्ट संघ में आ जाए तो किस प्रकार से उसका नाश होता। तो द्विविध का भी वैसा ही हुआ, जब उसको मालूम पड़ा कि भगवान ने नरकासुर को मार डाला है तो उनके प्रति उसके मन में इतना द्वेष निर्माण हुआ कि वो हर समय जो भी द्वारका के आजू बाजू के राज्य थे उनमें एक उधम मचा दिया था, उसने राजाओं को पकड़ के मारता था, ऋषि मुनियों उनके पत्नियों को पकड़ के गुफा में डाल देता था, पान कर देता था उनको, और विशेष करके जो युवा स्त्रियां थी उनके प्रति शारीरिक उनकी अवहेलना करता था। और एक दिन तो जब दाऊ जी अपने कई स्नेहियों के साथ एक पर्वत पे गया था, मेहनत पर्वत पे गया था, मैनाक पर्वत पर्वत के गए और वहां पे उनकी लीलाएं चल रही तो वहां पर त्रिविध आ गया, हाँ नीचे सखियों के साथ दमन कर। तो वहां पे जब गए तो त्रिविध वहां पे आके पहुंचा और बहुत उधम करने लगा, बलराम जी ने देखा 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 बोले बहुत हो गया, इस बंदर का फुटपटा गड़ा ले ली और बस एक ही स्ट्रोक वन पंच नॉकआउट, एक ही स्ट्रोक दे दिया। कहते हैं कि जैसे पहले के जमाने में जब सीमेंट बनता था तो कुछ खनिज पदार्थ और मिलते थे, पोजोलॉन्स मिलते थे, उन पोजोलॉन्स को लेके पल्वराइजर में डाल देते थे तो पूरा उसको चूरन होके बाहर निकलता था। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा स्ट्रोक मारा कि उसके ब्रेन ये बन जाओ, क्या कहते हैं इसको, खोपड़ी पल्वराइज होगी, बोले पूरी पाउडर हो गई, जब पड़ती है तो बड़े बल के साथ पड़ती है कि बलि नाम श्रेष्ठ है, पूरा ठंडा कर दिया। तो बलराम जी जितने गुस्से वाले उतने ही दयालु हैं, और उसका उदाहरण आपको जगन्नाथपुरी में मिल सकता है,
क्योंकि विशेष है कि भगवान
जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान सोने से पहले सारे देवी देवता उनका जो दिन का पूरा कार्यकलाप है वो भगवान के सामने आके सबमिट कर देते हैं। और बलराम जी स्वयं देखते हैं कि किसने क्या क्या किया, वो मॉनिटर करते हैं हर एक का कार्य। अगर किसी की कुछ गलती है उसकी छुट्टी, आपको कथा मालूम होगी, वो रुचि करके एक देरी थी, कुछ वो आने के लिए कुछ तो लेट हो गया और बलराम जी ने उसको बोले चल भाग से तुम नहीं आ सकते भगवान की सेवा। फिर अन्य रूप से वो एक उसने किसी भक्त के प्रति अपराध किया था तो उससे माफी मांगी, उससे सेवा करने के बाद फिर वो सेवा में चल गया। जगन्नाथ में तो भगवान की बलराम जी की और इनकी तो बहुत सी लीलाएं हैं। जैसे लक्ष्मी, जब लक्ष्मी किसी के घर चांडाल के घर में जाके भोग बनाई तो उनको पसंद नहीं आया, और फिर लक्ष्मी जब रूट गई तो दोनों भी कंगाल हो गए। और जिस दिन लक्ष्मी ने उनके लिए खाना पकाया तो सबसे पहले पहचाना बलराम जी ने, बोले इसमें तो पूरा स्वाद आ रहा है हमारे बहू रानी के हाथ से, तो बोले पहले पहले माफी मांगो। और वैसे रुक्मिणी के प्रति या लक्ष्मी के प्रति उनका विशेष लगाव है। और वृंदावन में भी राधा रानी के प्रति भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो तो गाढ़ है ही प्रगाढ़ है कुमार बलिय भाव में, लेकिन वात्सल्य भाव में बलराम जी का बहुत सारा प्रेम राधा रानी का है। तो भगवान को हर बार चाबी दे देते थे बलराम जी अगर वो कुछ ज्यादा नौटंगी कर लेते थे, ऐसा नहीं कर। और हर बार बाकी किसी से डरते नहीं थे, भगवान चाहते थे कि उन्होंने जो भी कुछ बदमाशी की और दाऊ जी को मालूम नहीं होनी चाहिए, ना तो फिर दाऊ जी की जो तीखी आंखें हैं उनके ऊपर आ जाएगी, उससे वो बहुत डरते थे। और आपको मालूम नहीं है जब सात दिन उन्होंने पर्वत उठा लिया था तो उस समय भगवान की जो बदमाशी है दाऊ जी ने देख ली और सिर्फ उनको पूछा कि क्या कर रहे हो भाई, इसी समय थोड़ा चक्कर चमक गए, बोले इतने तो पहचान लिया मैं क्या कर रहा हूं। तो भगवान की सारी लीलाओं को केवल गुरु जान सकते हैं और वही उन लीलाओं को हमारे हृदय में प्रकाश कर सकते हैं। इसलिए अगर भगवान की लीलाओं को समझना है, भगवत ज्ञान प्राप्त करना है, तो बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो इन लीलाओं को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। क्योंकि उन लीलाओं के लिए आवश्यक जो भी परिवेश है वो वे स्वयं ही निर्माण करते हैं, और उसी के कारण ही उन लीलाओं को उनके जैसा और कोई नहीं जान सकता, कोई जानने का प्रयास भी नहीं कर सकता। और उनकी खुद की जो लीला है सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अनंत अपरिमेय, उस अनंत की लीला है अपरिमेय है। परिमेय यानी जिन चीजों का परिमाण रहता है कुछ, जिसके द्वारा वो मापी जाती है। लेकिन संकर्षण भगवान बलराम की जो लीला है वो अपरिमेय है, जिनको हमारे बुद्धि के द्वारा ज्ञान के द्वारा हम मापने का प्रयास नहीं कर सकते। केवल उनके चरणों का अगर हम आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवत ज्ञान को हम पा सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 11वें स्कंद में जहां पे वो तस्मात गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयम उत्तम, इस श्लोक के तात्पर्य में वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने गुरु को उचित रूप से सम्मान नहीं देता तब तक वो भगवान को सम्मान नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु ही भगवान के प्रतिनिधि है जो आपसे सेवा ग्रहण करके भगवान को अर्पण करते, और वही एक व्यक्ति है जो आपके स्वभाव और आपके गुणों के अनुसार भगवान की सेवा में आपको लगाता है। तो अगर आप उनके प्रति उचित प्रकार से अपना आदर प्रेम नहीं जता पाए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आप कभी भी भगवान से प्रेम या उनके प्रति आदर नहीं निर्माण कर पाओगे अपने हृदय में। और इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो गुरु आश्रय कम लिखा है। और मंगल आरती करते हैं सारे उपचार तो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, लेकिन किसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? किसकी स्तुति कर रहे हैं? अंदर आके आते हैं ना सब गुरु की, गुरु की स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में सर्वांग देना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। तो गुरु की अगर हम सेवा करते हैं उचित रूप से, जो कि बलराम जी के प्रतिनिधि है, और बलराम जी जो साक्षात भगवान के अंश है, भगवान से अभिन्न है, वे उनको ग्रहण करते हैं। अगर वो प्रसन्न हो गए तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो, और लीला अवतारों में भी हम देखते हैं कि विशेष करके द्वापर युग में बलराम जी को उस युग का लीला अवतार कहा गया। कृष्ण नहीं बल्कि बलराम, जो पूरा दशावतार लिखा है जय गोस्वामी ने, तो यहां पर ज्यादा प्रोमिनेंस बलराम जी को देता है कि बलराम जी जो है वही इस भगवत तत्व को हमें हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। तो आइए उनके इस विशेष आविर्भाव तिथि के समय उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से वे भगवान की सेवा में निरंतर अपने आप को लगाए हुए हैं, उसी प्रकार से हम अपने गुरु के सेवा में लगे, क्योंकि वे ही हमें भगवान को दिखाने वाले हैं और हमारी सारी सेवाएं भगवान के चरणों में अर्पण करने वाले हैं। और वैसे बलराम जी के बारे में अगर बताया जाए तो बहुत कुछ है, विशेष करके जगन्नाथपुरी में उनकी इतनी सारी लीलाएं कि जो जो व्यक्ति भगवान के प्रति कुछ अपराध करना चाहता है तो भगवान स्वयं दंड नहीं देते, पहले बलराम जी उसको दंड नहीं देते। किसको मारा था? रोमहर्षण को छोड़ दो, और कौन? रोमहर्षण से उसको तो मार ही दिया, रामानु इच्छा आ रही है ना, वो तो भगवान का मारा। किसको लाफे मारे तुमने, मुंह फुला दिया था किसका? वो तो माया तो जगह ना, कोई में भी किसी को बहुत बहुत बढ़िया सा तमाशा माने लेफ्ट राइट से, वहां पर लीला में से कोई व्यक्ति नहीं जब पंडित विद्यालय झगड़ा नहीं, वह उनमें से किसी एक। हाँ, अगर हम गलती करेंगे तो हम ही पढ़ेंगे। पंडित विद्यालय आई डोंट नो, तर्क नहीं करें तो पढ़ेंगे हम नहीं मिलते। तो आइए बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके इस विशेष आविर्भाव तिथि में, हाँ एक्चुअली मैं बताना चाहता था कि हर समय जब किसी भी मंदिर का निर्माण होता है तो सबसे पहले
अनंत शेष भगवान अहो मला बघायला नाही ऐकायला आले तो. अरे कृष्ण अरे बा चालू आहे. इस्कॉन स्टँडर्ड्स ज्या ज्या वेळी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 जब भी किसी नए मंदिर का निर्माण होना हो या किसी भी वास्तु का निर्माण करना है तो सबसे पहले संकर्षण की पूजा की जाती है. देखो कितना आवश्यक है और उसके पीछे का जो मर्म है या सिद्धांत है उसे जानना बहुत ही आवश्यक है. किसी भी निर्माण के पहले उनकी पूजा करके उनको वहां पर स्थापित किया जाता है. जैसे मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही इसी मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पे हमने उनकी प्रतीक्षा की और उनसे प्रार्थना की थी कि जल्दी एक साल में यहाँ पे भगवान के भवन का या मंदिर का निर्माण हो. अभी मंदिर तो निर्माण हो गया, कितने लोगों को मालूम है कि वे यहाँ पे है नीचे, लेकिन उनके ही बल के कारण ये मंदिर निर्माण हुआ. कई लोग इकट्ठे आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, उनके सर पे ही नृत्य करेंगे और कितने लोगों को मालूम होगा कि ये उनका बल. कितना सारा करके भी इन सारे चीजों से अनभिज्ञ है, कोई जानता नहीं उनका अस्तित्व. तो एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते कोठापुर में जब वहां के मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो उस समय बता रहे थे कि भगवान बलराम जो है यानी नित्यानंद प्रभु जी वे हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी है. हालांकि भगवान के हर कार्य के परिवेश के वे ही अधिष्ठाता है, वे ही सब कुछ लीलाओं को आवश्यक चीजें वहां पे दे देते हैं, लेकिन स्वयं पूरे लो प्रोफाइल में रहते, अपना अस्तित्व वह किसी को दिखाते नहीं. तो उसी प्रकार से अगर हम अपनी सेवाएं करेंगे तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं और नित्य रूप से आपको उनके चरणों में आश्रय देंगे. तो आइए प्रयास करते हैं कि इस गुण को अपने जीवन में ढाल लें. अगर इस गुण को हम पाए तो निश्चित रूप से समझो कि बलराम जी की कृपा हम पे है और निश्चित रूप से हमें भगवत प्राप्त होगा. श्री बलराम की नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरः त्रयम्बारे नमोस्तुते प्राणिमां कृष्णपूर्वजा सुबलराम की. अरे कोई प्रश्न है? जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम. रोहिणी नंदन जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम.
Jai Shankar Shara, Jai Bhakti, Jai Shankar Shara, Jai Bhakti. Jai Bhagavati, Jai Jai Bhagavati, Jai Bhagavati, Jai Bhagavati, Jai Bhagavati, Jai Jai Bhagavati. Jai Balaji, Jai Balaji, Jai Balaji, Jai Shankar Shara, Jai Balaji, Jai Balaji, Jai Balaji, Jai Shankar Jai Balaji, Jai Balaji, Balaji, Jai Balaji.